समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और रोज की तरह ये सुबह भी लाई है एक नए उजाले के साथ, एक नई उम्मीद की किरण। कहते हैं वो जिंदगी ही क्या है जो किसी और की कामना है। हमें कोशिश करनी है किसी की मुस्कुराहटों की वजह बनने की, किसी का गम बांटने की।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
आज शुरुआत करते हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश विदेश के ताजा तरीन समाचार, साथ ही वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट रम्या। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार और रम्या, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
गुड मॉर्निंग टू यू टू सिद्धार्थ एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। We bring you a forever exciting daily news magazine program, Aaj Savere, wherein over the next half an hour we shall bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 20th of May. So let's begin with the headlines first, Siddharth.
जी हाँ, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू हो गया है। ओडिशा की 35 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा तथा बिहार की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर मतदान होगा। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान शामिल।
Campaigning for the remaining 2 phases of parliamentary elections are in full swing. While the 6th phase of polling will be held on the 25th of this month, the 7th and the final phase of polling will take place on the 1st of June. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi will be on a 2-day visit to Bihar starting today. The Prime Minister will arrive in Patna this evening, where he will attend 2 separate programs. After his arrival in the capital city, he is scheduled to visit the residence of the late senior BJP leader Sushil Kumar Modi at Rajendra Nagar in Patna to pay tribute to the departed soul. Sources said Mr. Modi is also scheduled to visit the BJP state headquarters in Patna and hold a meeting with party functionaries. Yesterday, Mr. Modi addressed several rallies in Jharkhand and West Bengal. Speaking at public meetings in Purulia, Vishnupur and Medinipur constituencies of West Bengal, he said the TMC welcomes infiltrators but it strongly opposes the Hindu minorities who have come to India after being persecuted. He said the process of granting citizenship under CAA has started and the Congress, Trinamool Congress and left parties could do nothing to stop it. On the other hand, Congress leader Rahul Gandhi and SP President Akhilesh Yadav attended a joint public meeting in Allahabad constituency. In Bihar, JDU President and Chief Minister Nitish Kumar addressed election rallies in Vaishali, Gopalganj and Sivan parliamentary constituencies. He enumerated developmental works done under the JDU-BJP-led NDA government in the past 17 years.
राजधानी दिल्ली में 25 मई को होने वाले मतदान के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और इसी श्रृंखला में कल पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शिवाजी कॉलेज राजा गार्डन में एक शाम मतदान के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने वक्तव्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं का होना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उनका प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख जनसंख्या समूह के रूप में युवा मतदाता न सिर्फ चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं बल्कि देश की नीति और राजनीति को नया आकार देते हैं, साथ ही देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। श्री कृष्णमूर्ति ने युवाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि विशेष रूप से पहली बार मतदान करने जा रहे मतदाताओं के पास मतदान से अपने विचारों को परिलक्षित करने का एक सुनहरा मौका है।
Prime Minister Narendra Modi has said that his government's biggest focus has been on governance. In an interview with a TV channel, Mr. Modi said that the government has modernized railways and created infrastructure. He also emphasized on the mantra of pro-people, good governance. The Prime Minister said India is on a take-off stage in industrial revolution. He also stressed that decentralized industrialization network is important to make agriculture viable. Mr. Modi said, when scope, scale, speed and skill meet, the country can achieve a lot. On a query on center-state relations, Mr. Modi said, he believes in competitive and cooperative federalism. He said that India will lead the world in artificial intelligence. The Prime Minister said that digital public infrastructure in the country is evolutionary and citizen-centric. Mr. Modi said, there is great trust of people in this government. He claimed that for this reason, BJP will get a historic mandate and will set a record of 400 seats.
हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद लापता ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी का पता लगाने के लिए यूरोपीय संघ ने त्वरित प्रतिक्रिया सेवा सक्रिय कर दी है। कॉपरनिकस आपातकालीन प्रबंधन सेवा यूरोपीय आयोग की वित्त पोषित सेवा है जो मानवीय संकट के समय सटीक भौगोलिक जानकारी मुहैया कराती है। राष्ट्रपति की खोज में तुर्की 6 वाहन और 32 पर्वतारोही खोज और बचावकर्मी भी ईरान भेज रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की हेलीकॉप्टर उड़ान से जुड़ी खबरों पर चिंता जताई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में ईरान नागरिकों के साथ खड़ा है और राष्ट्रपति और उनके साथियों की भलाई के लिए प्रार्थना करता है।
Now it's time for some weather update. The India Met Department IMD has issued a red alert for severe heat wave conditions over the plains of northwest, east and central India for the next 4 days. The IMD stated that severe heat wave conditions are very likely over Delhi, Haryana, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Bihar. Yesterday, severe heat wave conditions were observed in Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Madhya Pradesh, Kerala and Tamil Nadu. Najafgarh in Delhi recorded the highest temperature in the country at 47.8 degrees Celsius. The weather agency also stated that the southwest monsoon has advanced into some parts of the Maldives and the Comoran area, the South Bay of Bengal, the Nicobar Islands and the South Andaman Sea.
और अब बात करते हैं खेल खबरों की। आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टॉस होने के बाद बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। इससे पहले हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 214 रन बनाए थे। हैदराबाद ने 5 गेंद शेष रहते 6 विकेट पर 215 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। और आईपीएल में अगर हम प्लेऑफ की लाइनअप की बात करें तो क्वालिफायर 1 वो 21 मई को कोलकाता बनाम हैदराबाद के बीच होगा। एलिमिनेटर 22 मई को बेंगलुरु बनाम राजस्थान के बीच में होगा। क्वालिफायर 2 24 मई को क्वालिफायर 1 में हराने वाली टीम और एलिमिनेटर की विजेता टीम के बीच मैच खेला जाएगा और इसका फाइनल 26 मई को क्वालिफायर 1 और 2 के विजेता के बीच होगा।
In some more sports news, in athletics, Nishad Kumar won a silver and Preeti Pal claimed a bronze medal as Indian participants excelled on the third day of competitions at the 2024 Para-Athletics World Championships in Kobe, Japan yesterday. Today, India will be expecting another medal as Deepthi Jivanji has qualified for the final of the women's 400-meter T20, setting a new Asian record with a time of 56.18 seconds in the heats yesterday. Meanwhile, Britain's Sabrina Fortune broke the world record in the women's shot put F20 and won the gold medal yesterday.
तो श्रोताओं ये थे अब तक के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के बाद कार्यक्रम आज सवेरे में अब वक्त हो चला है प्रमुख महानगरों की खबरों का और सबसे पहले चेन्नई की खबरें जानते हैं रम्या से।
जी सिद्धार्थ, So the listeners should know that the Department of Welfare of Non-Resident Tamils, which established Non-Resident Tamils Welfare Board and invited non-resident Tamil people aged between 18 and 55 years living abroad or in other states of India to register themselves as members on the website nrtamils.tn.gov.in has waived off the registration fees of 200 rupees for an initial period of 3 months from 15th of May to 15th of August this year. The board was formed to safeguard the welfare of individuals affected in response to the recent growth in migration from Tamil Nadu to foreign nations and other Indian states for reasons such as work, education and business, among others. And we have another news from Chennai. The southern suburbs will now have to, The southern suburbs will now have private bulk waste handlers to collect and process segregated waste from gated communities, commercial complexes, schools and other institutions that generate more than 100 kilograms of waste daily. Tambaram Corporation empaneled 3 firms to start collecting segregated waste from its 414 bulk waste generators. Dr. Arul Anand, City Health Officer of Tambaram, said that the bulk waste handlers will process the waste in their own facilities compost, generate bio-CNG from wet waste and send plastic and other dry waste for recycling.
और अब नजर डालते हैं दिल्ली के समाचारों की ओर। और चुनाव में भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय की संकल्प पत्र पहल ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी सहित दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब तक लगभग 16 लाख संकल्प पत्र माता पिता के हस्ताक्षर के साथ वापस प्राप्त हो चुके हैं, जो आगामी चुनावों में भाग लेने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने इन सभी अभिभावकों से 25 मई को मतदान प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में हर एक वोट कीमती है, इसलिए अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। लगभग 16 लाख हस्ताक्षरित संकल्प पत्र वापस आने से इस पहल की प्रभाव का इसका पता चलता है। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि माता पिता के बीच अपने बच्चों को प्रोत्साहन से प्रभावित होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली नगर निगम ने मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने और इस महीने की 25 तारीख को होने वाले लोकसभा चुनावों में भागीदारी बढ़ाने के लिए 5 किलोमीटर लंबी मैराथन रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया। नगर निगम के नजफगढ़ क्षेत्र द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम द्वारका स्थित वेगस मॉल से शुरू हुआ, जिसमें स्थानीय निवासियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम में न केवल मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया, बल्कि प्रतिभागियों के बीच स्वास्थ्य और फिटनेस की भावना को भी बढ़ावा दिया गया। और अब मैं आपके पास बेंगलुरु से क्या समाचार है।
जी, अ स्पेशल कोर्ट फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैज इश्यूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट एब्सकॉन्डिंग जेडीएस एमपी प्रज्वल रेवन्ना, हु इज अक्यूज्ड ऑफ रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। The warrant was issued following an application moved by the Special Investigation Team, SIT, set up to probe serial sex abuse cases in Hassan district, allegedly involving Prajwal and his father, H.D. Revanna, who is currently out on conditional bail in the Hole Nara Sipura kidnapping case. The SIT obtained the arrest warrant from the court and has been actively seeking information regarding the notices issued against Prajwal Revanna. The court requested detailed information from the SIT about the lookout and blue corner notices previously issued. The SIT later provided comprehensive information to the court, which subsequently led to the issuance of the arrest warrant. The SIT is now preparing to issue a red corner notice through CBI, a move expected to lead to the eventual cancellation of Prajwal's passport.
और अब नजर डालते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के समाचारों पर। जिला निर्वाचन कार्यालय ने गर्मी को देखते हुए आज होने वाले चुनाव में मतदाताओं से जल्दी आने का आग्रह किया है। वर्तमान गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए डीईओ ने मतदाताओं से मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन होगा गर्मी बढ़ती जाएगी, इसलिए अभी तक अगर आपने मतदान नहीं किया है और आप निकलने की सोच रहे हैं तो आप जल्दी निकल सकते हैं। एक बयान में कहा गया है कि मुंबई उपनगरीय जिले के 4 लोकसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों पर मत डाले जा रहे हैं और गर्मी को ध्यान में रखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल और छाया की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को अपना नाम ढूंढने में सहायता के लिए स्वयं सेवकों यानी वॉलेंटियर्स को भी नियुक्त किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को मतदान करने में आसानी हो सके।
जी बिल्कुल।
और मुंबई जिला निर्वाचन कार्यालय ने चुनावी प्रक्रिया में महिला मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जिले के 2 लोकसभा क्षेत्रों के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में महिला संचालित मतदान केंद्र यानी सखी मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। और रम्या
जी,
जो फीमेल वोटर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये बहुत अच्छी पहल है।
बिल्कुल, बिल्कुल।
वो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और मुंबई शहर में 2 लोकसभा क्षेत्रों मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई दक्षिण में कुल 11 सखी मतदान केंद्र हैं। इन 11 सखी मतदान केंद्रों में से 6 मुंबई दक्षिण मध्य निर्वाचन क्षेत्र में और 5 मुंबई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में हैं।
जी।
और अब हैदराबाद से आपके पास क्या समाचार है राम्या?
हैदराबाद से भी इलेक्शन रिलेटेड ही न्यूज है। द तेलंगाना स्टेट कैबिनेट इज लाइकली टू मीट एट 3 PM टुडे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी इन हैदराबाद। This was decided hours after the Election Commission of India gave its nod yesterday on the condition that it takes decisions only on the issues of an urgent nature. The ECI had earlier denied permission for holding a cabinet meeting as the model code of conduct for the May 13th Lok Sabha elections and the 27th May Legislative Council by poll will only end on 5th of June. Chief Minister Revanth Reddy had said on Saturday that he will lead a delegation of ministers to Chief Election Commissioner Rajiv Kumar to seek his permission for discussing crucial issues that were on the agenda. It was expected to take a call on the buildings allocated to Andhra Pradesh besides other pending interstate issues. ECI Joint Secretary Avinash Kumar sent a letter to Chief Secretary A. Santi Kumar yesterday stating that the poll panel had allowed the government to conduct the cabinet meeting on the condition that it only takes decisions on emergency time-bound issues.
और अब नजर डालते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता पर। और कोलकाता में वहां के मौसम के बारे में ये खबर है कि वहां पे गर्म और उमस भरा मौसम बना हुआ है। हालांकि कल शाम को कुछ इलाकों से बारिश की भी खबरें आई हैं, लेकिन कुल मिलाकर उमस काफी ज्यादा है और इसमें कोई भी राहत नहीं मिली है। मौसम कार्यालय की ओर से 20 मई से पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में बारिश का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। कोलकाता में भी आज बारिश की संभावना है। तो श्रोताओं, ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब हम लेते हैं मौसम का हाल और सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और कल दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और रम्या 47.8 इतने ज्यादा गर्मी है।
मैं खुश और थी कि कल संडे था और सब घर पे थे।
जी, ये भी एक खुशी की बात है, लेकिन इतना ज्यादा अगर बाहर गर्मी है तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, अपने आप को हाइड्रेट करके रखना होगा और अगर बहुत जरूरी काम है तभी आप घर से बाहर जाएं
और सनस्क्रीन लगाकर जाएं जहां भी जाएं।
बिल्कुल, तो रम्या को बिल्कुल ध्यान है आपका, तो आप अच्छी तरह से सारे प्रिकॉशंस लेकर घर से बाहर निकलें। और इसके साथ ही राजधानी में अगर अगले 2 दिनों की बात की जाए यानी आज और कल, तो राजधानी में लू और गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो वहां आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और हमें आप बताएं देश के बाकी महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है?
बाकी महानगरों में धूप की जगह बारिश की बातें हो रही हैं।
इतनी अच्छी
तो,
बात है।
हाँ जी,
दिल्ली में कम से कम ये सुन के राहत मिल रही है कि
कम से कम कहीं और तो बारिश हो रही है।
बिल्कुल,
बिकॉज चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म्स। मिनिमम टेम्परेचर विल बी 27 डिग्रीज एंड मैक्सिमम अराउंड 35 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The minimum temperature will be 22 degrees and maximum around 30 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky. The temperature will hover between a minimum of 24 and a maximum of 35 degrees Celsius.
और कार्यक्रम आज सवेरे में वक्त हो चला है आज के दिन के इतिहास से जुड़ी प्रमुख घटनाओं को जानने का। और सबसे पहले बात करते हैं 1902 की, जब क्यूबा को अमेरिका से आजादी मिली थी।
On this very day in 1498, Vasco da Gama, upon his arrival to India, met the Zamorin, the ruler of Calicut at Malabar coast. He was joined by an experienced Gujarati pilot at Malindi. His main intention behind this visit was to open sail routes from Europe and Asia so that Portugal can control trade and commerce.
1995 में आज ही के दिन रूस द्वारा मानव रहित अंतरिक्ष स्पिक्ट का सफल प्रक्षेपण किया गया था।
In 1677, छत्रपति शिवाजी महाराज won the fort of जिंजी।
1990 में आज ही के दिन हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष से पहली तस्वीर धरती पर भेजी थी।
In 1915, गांधी जी founded सत्याग्रह आश्रम, later known as साबरमती आश्रम, after the name of the river in Ahmedabad, and also in 1965, under the leadership of Commander M.S. Kohli, Indian truckers conquered Mount Everest. कैप्टन ए एस चीमा एंड शेरपा नवांगोम्बू वर द फर्स्ट टू रीच द समिट।
1998 में आज ही के दिन मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली पिनाका का सफल परीक्षण किया गया था।
इन 1974 ऑयल प्रोडक्शन स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे हाई। इट्स नोन फॉर इट्स पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। इट्स कंट्रोल्ड बाय इंडियाज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन।
और 2011 में आज ही के दिन झारखंड की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गौरव हासिल करते हुए पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा। और राम्या कहते हैं कि अगर इंसान के जज्बे की बात होनी चाहिए, उम्र एक सिर्फ एक नंबर है, लेकिन अगर आप दिल से चाहें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं।
जी, उसी में मैं कुछ कहना चाहती हूं कि 1994 में इंडियन शिप ने रेस्क्यू किया 2000 से ज्यादा इंडियन नेशनल्स को जो यमन के एडन सिटी में फंस चुके थे।
जी, और अब जानते हैं आज के दिन से जुड़े हुए उन शख्सियत को याद करने का समय है जो आज के दिन हमसे मिले या आज के दिन हमसे जुदा हुए। और आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा देश की स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद पाल ने। बिपिन चंद पाल लाल पाल पाल तिकड़ी का हिस्सा थे, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद पाल शामिल थे। उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जबरदस्त आंदोलन चलाया था। बिपिन चंद पाल शिक्षक और पत्रकार होने के साथ साथ एक कुशल वक्ता और लेखक भी थे। वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक रहे पाल एक बड़े समाज सुधारक भी थे। पाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी और 1907 में ब्रिटानिया हुकूमत द्वारा चलाए गए दमन के समय पाल इंग्लैंड गए। वो वहां क्रांतिकारी विचारधारा वाले इंडिया हाउस से जुड़े और स्वराज पत्रिका की शुरुआत की और स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिपिन चंद पाल 1922 में राजनीतिक जीवन से अलग हो गए और 20 मई 1932 में अपने निधन तक राजनीति से अलग ही रहे।
Today we are remembering great Maratha ruler Malhar Rao Holkar on his death anniversary. He was one of the early officers along with Ranoji Sindhya to help spread the Maratha rule to northern states and was given the estate of Indore to rule by the Peshwas during the reign of the Maratha emperor Shahu I. He was the founder of the Holkar dynasty that ruled Malwa. He participated in the third battle of Panipat. He, along with Raja Surajmal, is said to have advised Sadashiv Rao Bhau, Peshwa's cousin and the de facto commander of the Maratha army, to leave all their heavy luggage, civilians and heavy static French-made cannons in any of the Maratha forts behind the Chambal River and perform the traditional Maratha guerrilla warfare against the Afghans until they retreat from India.
और आज ही जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत की, जो हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में कौसानी उत्तराखंड में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण बेहतरीन था। पंत जी की कविताओं में प्रकृति और कला के सौंदर्य को प्रमुखता से जगह मिली है। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ प्रमुख कृतियों में चिदम्बरा, वीणा, गुंजन, क्राम्या, युगांत, युगवाणी, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद बहुत प्रसिद्ध हुए। सुमित्रा नंदन पंत को वर्ष 1960 में उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद को साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। चिदम्बरा को सुमित्रा नंदन पंत की शीर्ष कविता संग्रहों में गिना जाता है और चिदम्बरा के लिए पंत जी को वर्ष 1961 में साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
जय जन भारत, जय जन मन, अपने भक्त
Today we are remembering cinematographer, director, screenwriter and film editor Balu Mahendra on his birth anniversary. He worked predominantly in Tamil and Malayalam films. Born in Sri Lanka, Mahendran developed a passion for photography and literature at a young age, following which he pursued it professionally after his graduation. In 1966, he moved to India and gained admission to the FTII Pune to pursue a course in motion picture photography. After working in over 20 films as a cinematographer, Mahendra made his directorial debut in 1977 with the Kannada film Kokila. Since then, he has directed over 20 films in a span of 36 years. Along with Bharathi Raja and Mahendran, he is considered as a trendsetter in Tamil cinema. He is a recipient of 6 national awards, 5 Filmfare Awards South, and several state government awards. Of his illustrious career, some of his most memorable works include Moodpani, Kokila, Ariyadha Kolam, and Moondram Pirai, which was remade in Hindi by him as Sadma. Let us listen to this song from the film.
अखियों में आ जा साथी रे रारी रारू ओ रारी रू रारी रारू।
अष्टतम आज ही जयंती है भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में से एक हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की, जिन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत ने 1948 में पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए अभूतपूर्व वीरता और नेतृत्व का परिचय दिया और कश्मीर की दारापारी के युद्ध में शहीद हो गए। पीरू सिंह का जन्म आज ही के दिन 1918 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था। बात 1948 की है। उत्तरी तिथवा की डी कंपनी में पीरू सिंह हवलदार मेजर के रूप में नियुक्त थे और इस कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो पहाड़ी पर जमी दुश्मन की टुकड़ी पर हमला कर उस पर काबू कर ले। दुश्मन ने बहुत चतुराई से मीडियम मशीन गने लगाकर अपनी रणनीति बनाई थी और उसकी ओर से वो सब रास्ते निशाने पर थे जिनके जरिए उन पर हमला बोला जा सकता था। बंकरों से ग्रेनेड फेंके जा रहे थे और हवलदार मेजर पीरू सिंह ने किसी की भी परवाह नहीं करी और उन्होंने दुश्मन के साथ लोहा लेते हुए उसे पीछे धकेल दिया। इसी बीच अचानक एक ग्रेनेड आकर सीधे उनके चेहरे पर लगा और इसने उन्हें घायल कर दिया और बाद में एक गोली उनके सिर में लगी और उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी जयंती पर पूरे देश का उनका नमन।
Today is also the birthday of former Indian cricketer and commentator Anjum Chopra. She played various sports at an early age, representing her school and college in athletics, basketball and swimming. She made her debut in one-day internationals at the age of 17 against New Zealand at Christchurch, New Zealand, and made her test debut a few months later against England. She is a recipient of Padma Shri. And today is also the birthday of Telugu cinema's prominent stars Junior NTR. The grandson of Telugu matinee idol N.T. Ramarao Sr., he appeared as a child actor in Brahmarishi, Vishwamitra and Ramayanam. And for Ramayanam, he won the National Film Award for the Best Children's Film for that year. Some of his notable films include Simhadri, Yamadonga, Brindavanam, Badshah, Jayalavakusha and RRR. Let us listen to this song from RRR, which also won the Oscars.
श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां ये इशारा कर रही हैं कि आपसे अनुमति ली जाए। आपके एक बेहतर दिन की शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ सिंह और राम्या को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी कोट।
Stay tuned for our Hindi news bulletin, Samachar Prabhat, followed by the morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.
Namaskar.